सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
रेडियो भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरविंद भारद्वाज का नमस्कार। रेडियो भारत के आज के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज 3 अगस्त 2019 दिन शनिवार, तदनुसार विक्रमी संवत 2076 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। समय सायंकाल के 4:01 हुआ चाहता है। अब से लगभग 1 घंटे तक आपका और हमारा साथ बना रहेगा। दोस्तों, रेडियो भारत की साप्ताहिक कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास की, भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य की भी। कुछ गीत संगीत हुआ करता है और कुछ पूरे सप्ताह के विश्व के, भारत के और कनाडा के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाओं पर चर्चा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आज तीज है। तीज एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिंदुस्तान में। उसके बारे में भी बात होगी, कुछ समाचार भी आपको सुनाए जाएंगे। लेकिन आइए हमेशा की तरह कार्यक्रम का आरंभ एक खूबसूरत गीत के साथ करते हैं। आपको याद दिला दें कि रेडियो भारत हर शनिवार आपकी सेवा में 4 से 5 सायंकाल को उपस्थित होता है। आप इसे eawaz.com पर वेबसाइट पर सुन सकते हैं, या अगर आप फ़ोन पर सुनना चाहते हैं तो 6475571017 डायल करें और आप इस प्रोग्राम को सुनें। आइए प्रोग्राम का आरंभ एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ करते हैं। बड़ा पुराना गीत है लेकिन अभी भी तरोताज़ा लगता है। आइए।
मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझको बुलाऊं दोबारा। तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आबरू, तू मेरी जान। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझको बुलाऊं दोबारा। तेरे दामन से जो इन गवाहों को सलाम, छीनू मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझसे दो कुर्बान। तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आबरू, तू मेरी जान। माँ का दिल बनते कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बनते कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी मन भी तुझे बन के याद आ जितना याद आता है मुझको उतना पड़ पाता है तू तुझको दिल को दुआ मेरी आरज़ू
बेहद खूबसूरत नगमा। उम्मीद है कि आपको अपने अपने देश की अपने अपने मदर कंट्री की जरूर याद आई होगी। बहुत सी भाषाओं में बहुत से देशों में इस गीत को सुना जाता है। हालांकि ये हिंदुस्तानी में है लेकिन इस गीत की जो भावना है वो हर देश के रहने वाले वासी के लिए एक है। इस गीत को सुनाने का मकसद एक और भी था। भारत में हमारे देश में हमारे मदरलैंड में आजकल कश्मीर को लेकर काफ़ी हंगामा चला आ रहा है, जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। इससे संबंधित ये खबर मैं साझा कर रहा हूँ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बैट टीम की घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम किया है, जिसमें 5 से 7 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 35,000 सोल्जर्स अपुष्ट समाचारों के अनुसार इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन ऑफिशियल गिनती 35 से 38,000 सोल्जर्स की है। कि ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जो सामने आ रही है। कश्मीर कैरन सेक्टर में पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जिसको बोलते हैं, और इसके आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने विफल किया है। और कार्रवाई में पाक सेना और फिर आतंकवादियों के 5 से 7 लोग मारे गए हैं। सेना के मुताबिक पिछले 36 घंटे के भीतर जैश के 4 आतंकी भी मार गिराए गए हैं। आतंकियों के पास से स्नाइपर राइफल्स, IED और पाकिस्तान में बने बारूदी सुरंग मिले हैं। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने में न केवल लगी रहती है बल्कि उन्हें हथियार भी मुहैया कराती है। सेना ने यह भी साफ किया है कि वह ऐसी हरकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती रहेगी। सेना LOC के साथ कश्मीर में आतंकवादियों की हर हरकत का जवाब देती रहेगी। आपको बता दें कि सेना की तरफ से पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इसको देखते जम्मू कश्मीर सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी से निकलने को कहा गया है। सरकार की एडवाइजरी के बाद लोग जम्मू कश्मीर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। वायुसेना के विमानों की भी मदद ली जा रही है। ANI के एक ट्वीट ने इस बारे में लिखते हुए कहा है कि इन लास्ट 36 आवर्स इंडियन आर्मी हैज फॉइल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बाय ए पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम स्क्वाड इन कैरन सेक्टर। 5 to 7 पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स terrorists eliminated, their bodies are lying on the LOC not retrieved yet due to heavy firing. आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट एक ऐसी टीम है जिसमें पाक सेना और आतंकी दोनों होते हैं। इनका काम मौका मिलते ही LOC पर भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करना होता है। सीमा पर जितने भी जवानों के शवों के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके पीछे बैट का ही हाथ होता है। उम्मीद है हमारा देश जिसे हम यहाँ बैठे देखते भी रहते हैं, उसके बारे में सुनते भी रहते हैं और जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो कश्मीर में शुरू हुई है और बहुत से लोगों को बहुत से जो डिफरेंट पार्टीज़ के नेता हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि 35 से 38,000 जो सोल्जर्स की मूवमेंट हुई है कश्मीर वैली में उनसे उनको बहुत दिक्कत है। हालांकि पूरे भारत में आर्मी की मूवमेंट जब भी अवसर होता है जब भी कहीं ज़रूरत होती है एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये एडवाइजरी जो जारी हुई है और बहुत से तनाव का माहौल वहाँ बना हुआ है, असमंजस का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन अभी गवर्नर की तरफ से या सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। बाकी इस विषय में हम आगे समाचारों में बात भी करेंगे, साथ साथ हम आपको थोड़ी सी डिटेल में ये भी बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के बाद जम्मू कश्मीर जा सकते हैं और 2 दिन तक रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर सरकार की एडवाइजरी और राज्य में कुछ बड़ा होने की अटकलों के बीच खबर सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह संसद सत्र के बाद 2 दिन के लिए घाटी का दौरा कर सकते हैं, वह जम्मू भी जाएंगे। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने की सलाह दी थी। अब यह भी खबर आ रही है कि जम्मू में बने अमरनाथ यात्रियों के बेस कैंप से भी यात्रियों को जाने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए बेस कैंप छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। सरकार का यह आदेश घाटी में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए आया है। हालांकि सरकार ने इस आदेश के बाद तमाम तरह की अटकलें भी लगानी शुरू हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि राज्य के विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ ना करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि 35 से या 370 के ऊपर छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जम्मू और लद्दाख इन लोगों को कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरी घोषित करके कश्मीर को एक छोटा स्टेट बनाया जाए ताकि उसको आराम से हैंडल किया जा सके और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, इलेक्शंस हैं या दूसरी जगह हैं या डेवलपमेंट है, उसको भारत के साथ मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं 35 ए और 376 स्पेशल धारा है जो कश्मीर को 377 स्पेशल धारा है जो कश्मीर को दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर को दी गई है। इसमें कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। इसके तहत भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो हैवी मूवमेंट है आर्मी की वो वैली की तरफ भेजी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में अचानक रोकी गई अमरनाथ यात्रा, सैलानियों को वापस आने की एडवाइजरी और घाटी में 25,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। इसके साथ यह अफवाह भी है कि केंद्र सरकार राज्य में अनुच्छेद 35 से हटाने का विचार कर रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बाहर आकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें शामिल मैं भी शामिल हूं, राज्यपाल से मिलकर पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को हटाने की खबरों के बारे में भी पूछा है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अमर अब्दुल्ला ने यह भी जोड़ा कि राज्यपाल के शब्द आखिरी नहीं होते हैं, हम जम्मू कश्मीर पर सरकार की ओर से संसद में बयान चाहते हैं। तो ये बड़ी खबरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से थी और उम्मीद है कि वहाँ जल्द से जल्द शांति बरकरार होगी और मेन स्ट्रीम में लाने का जो भी प्रोसेस है वो उम्मीद है कि 15 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री कुछ घोषणा कर सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग वहाँ पैनिक क्रिएट करते रहेंगे क्योंकि उनको इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है कि वहाँ पर जो मुफ्त में काफ़ी पैसा समेटा जाता है उसमें से बहुत सा हिस्सा इन लोगों के पास सरकार की तरफ से जाता है और वो सब जो स्पेशल स्टेटस जो है वो बंद हो जाएगा। कश्मीर की इस खबर के बाद आइए एक और खूबसूरत गीत की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बड़ा ही रोमांटिक सॉन्ग है और वहीदा जी के ऊपर ये फिल्माया गया था, साथ में जो है वो नैनीताल की इसमें शूटिंग है। आप इस गाने को सुनिए, एक अलग माहौल में अपने आप को महसूस कीजिए और हम आपको वापस खबरों की और हकीकत की दुनिया में लेकर आएंगे इस गीत के बाद।
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है।
दो लोग मिलते
ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीग भीग झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीग भीग झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर किसी नजारे के दिल को आरजू क्यों हो, अब किसी नजारे की दिल को आरजू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, जब से पा लिया तुमको सब जहान।
अब किसी नज़ारे की दिल को आरजू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको हर जहान मेरा है। इस खूबसूरत गीत के बाद आइए बात करते हैं कश्मीर की थोड़ी सी, और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस समय, वो फायरिंग के जवाब में जो भारतीय सेना ने की है उसके मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान घबरा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी जिसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में निर्मित किए जा रहे एक बांध में लगे 50 चीनी नागरिकों को वहां से हटा लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद चीनी नागरिकों को वहाँ से हटा लिया गया है। ANI ने एक ट्वीट में कहा कि इंडियन आर्मी सच रिस्पॉन्सेज are only against military targets and infiltrating terrorists who are aided by the Pakistani army. Allegations of firing cluster bombs by India is yet another Pakistan's lies, deceit and deception. उन्होंने ठीक और साफ शब्दों में बता दिया है कि इस तरह के जो 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 मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है वो जो है इन्फिल्ट्रेशन के इन्फिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट होता है, इससे जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भ्रामक दावे ना करने की चेतावनी भी दी है। सेना ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश करती आ रही है। पाकिस्तान आर्मी के कई तरह के हथियार देकर आतंकियों की मदद करती है। भारत ने कई बार स्पष्ट कहा है कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी दुष्प्रचार कर रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से लगाए गए क्लस्टर बम दागे जाने वाले आरोपों के बारे में ये बात कही, जैसा कि मैंने आपको ANI के ट्वीट के बारे में बताया। सेना ने कहा कि पाकिस्तान का छल कपट और झूठ अब नहीं चलेगा। दरअसल पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने ये ट्वीट करके भारतीय सेना पर इल्ज़ाम लगाया था। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे क्योंकि कश्मीर की समस्या का समाधान आसान नहीं है, और ये सही है कि धारा 35A और 370 को हटाना बीजेपी सरकार के एजेंडा में है। सरकार जब चाहे इसको लेकर कुछ फैसला कर सकती है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए दिल्ली इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही और अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है। कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। ये भी है कि आने वाले 15 अगस्त को, जैसा कि आपको बता चुके हैं, प्रधानमंत्री कोई बड़ा प्लान करने वाले हैं और सारी कवायद उसी को लेकर हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाएगा, कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार की कोशिश होगी कि बिना किसी बाधा के चुनाव कराए, उस लिहाज से भी इस हलचल को देखा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि हाल फिलहाल में कुपवाड़ा और तंगधर में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हुई है, उसको लेकर सरकार कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्र ये भी संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश भारत को उकसाने की है ताकि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करे और वो ऐसी हरकत करें कि जिसके जाल में चाहे अनचाहे भारत फंस जाए। दरअसल भारत के इनकार के बावजूद अमेरिका की ओर से दो बार कश्मीर को लेकर मध्यस्थता की बात करना भी सामान्य बात नहीं लग रही है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं कश्मीर को लेकर। देखते हैं आने वाला समय कश्मीरियों और कश्मीरियत और भारतीय लोगों के बीच में किस तरह की जो है वो जद्दोजहद लिखी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा और कश्मीर निस्संदेह भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसको किसी भी हालत में किसी भी तरह से ना तो इसमें विदेशी जो है वो मध्यस्थता स्वीकार है तीसरे गुट की, और ना ही भारत ने कभी कश्मीर को छोड़ने की बात मानी है। देखते हैं आने वाला समय किस तरफ मुड़ता है। आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल लेते हैं और कुछ कमर्शियल्स मैं आपको बोल के भी बताऊंगा।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव यूनिट 211 मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वही खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888 647-699-888।
आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज। आप उन्हें 416-262-0414 पर कॉल कर सकते हैं। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फोन उठाइए और बात कीजिए और कॉम्पिटिटिव एक कोट लीजिए आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए। कोमल भारद्वाज 416-262-0414। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजीव मलिक कहते हैं कि डू नॉट गो फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट हैं कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस और न्यू इमिग्रेंट इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस में भी आप इनसे सलाह ले सकते हैं। ग्रुप बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं संजीव जी के पास, हेल्थ, डेंटल और विजन प्लान्स जिनमें शामिल हैं। डील करते हैं सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। 647-883-4445 संजीव जी का नंबर है। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 647-883-4445। डीपी जैन सीपीए सीजीए की भी बात करते चलते हैं। जैन साहब 3 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है और 13 साल से ज़्यादा से कनाडा में ही फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स में, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग और एडवाइजरी में, कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट पर्सनल और बिजनेस टैक्सेस में, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, CRA ऑडिट्स या HST, पेरोल मैटर्स या अकाउंटिंग मैटर्स, किसी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं डीपी जैन साहब को 416-305-0080 पर। डीपी जैन सीपीए सीजीए 416-305-0080। पारस चोपड़ा जी की बात करते चलते हैं, मॉर्गेज इंटेलिजेंस से संबंध है पारस जी का 6476801284। आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल सभी तरह की प्रॉपर्टीज के लिए बेस्ट रेट्स के लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं पारस जी से, अच्छे रेट आपको लेकर देंगे। और मॉर्गेज इंटेलिजेंस में है 6476801284 फॉर ऑल योर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए पारस चोपड़ा से संपर्क स्थापित आप कर सकते हैं। रेडियो भारत 6476400555 अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम समाप्त होने के बाद। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं जो कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट आई है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के ये कहने के एक दिन बाद कि मध्यस्थता पैनल राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का हल नहीं निकाल सका है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि उन्हें मालूम था कि यह प्रयास विफल होगा। उन्होंने संत महात्माओं की एक सभा में कहा अयोध्या में कि हमें मालूम था कि इस मध्यस्थता से कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन यह अच्छा है, यदि प्रयास होते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि महाभारत से पहले भी मध्यस्थता की कोशिश हुई थी लेकिन वह कोशिश विफल रही थी। जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है उन्हें बता दें कि युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जो हैं वो कौरवों के पास गए थे और उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी कि अगर आप 5 गांव भी हमें दे दें यानी पांडवों को तो ये युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन दुर्योधन ने उसके लिए भी मना कर दिया था और महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। खैर एक पासिंग रेफरेंस में मैं आपको जानकारी दे दी, लेकिन मध्यस्थता जो बात है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर वो अब विफल हो गई है। मुख्यमंत्री परमहंस रामचंद्र दास की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि वह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को फैसला करने के लिए 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा, क्योंकि मध्यस्थता से हल तक पहुंचने की जो कोशिश है वो विफल हो गई है। एक खबर पाकिस्तान से ले चलते हैं कि थोड़ी अजीब सी खबर है, लेकिन एक संदेश में कहा गया है कि डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, ना घर के भीतर और ना ही खुले में, जो इस चेतावनी की अनदेखी करेंगे वो इसके परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। पेशावर से ये खबर है और पाकिस्तानी तालिबान ने उत्तरी वजीरिस्तान के जनजातीय जिले के लोगों को तेज आवाज में संगीत ना बजाने और अपने बच्चों को पोलियो की दवाई ना पिलाने की चेतावनी दी है। डॉन अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधित तहरीक तालिबान ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीराम शाह स्थित मुख्यालय से एक पन्ने का पैम्फलेट जारी करते हुए चेतावनी दी है। उर्दू में प्रकाशित संदेश में महिलाओं से कहा गया है कि वे अकेले घर से बाहर ना जाएं और उनके साथ कोई पुरुष अवश्य हो। पैम्फलेट में लिखा गया है कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यानी जो वहां के लोग हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरह के बयान कई बार तालिबान की ओर से जारी किए गए थे जिसे अनसुना कर दिया गया था, लेकिन इस बार तालिबान के आदेश का उल्लंघन करने वालों की हम खबर लेंगे। संदेश में कहा गया है कि डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, ना घर के भीतर और ना ही खुले में, जो इस चेतावनी की अनदेखी करेंगे वे इसके परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। पोलियो कार्यकर्ताओं से भी कहा गया है कि वे टीकाकरण अभियान के दौरान बच्चों की उंगलियों पर निशान लगाएं, लेकिन वे बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाएं। संदेश में कहा गया है कि महिलाएं घर से अकेले नहीं निकलें। बड़ी अजीब सी खबर है और पाकिस्तान जो कि नया पाकिस्तान बनाने की कवायद में प्रधानमंत्री इमरान खान जो पूरी जी जान से लगे हुए हैं, वहाँ पर इस तरह की खबर आना एक बेहद शर्मनाक बात है। पोलियो में जैसा कि आप जानते हैं पोलियो कैंपेन में भारत ने पूरे विश्व में जहां एक कीर्तिमान स्थापित किया है और बड़ी तेज़ी से पूरे भारत में ये पूरी शिद्दत से कैंपेन चलाया गया था, वहीं पाकिस्तान में ये उतना अच्छा नहीं रहा और अब ये एक तालिबानी फरमान और आ गया है, तो देखते हैं इसका कहां तक असर पड़ता है। पाकिस्तान की जनता को इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना उनके बच्चे आने वाले समय में भीषण बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इन खूबसूरत जो गीत मैंने आपको सुनाए हैं, ऊपर के दो, एक तीसरा गीत आपकी नज़र कर रहा हूं इन खबरों के बाद, वो भी एक बड़ा रोमांटिक गीत है। और पर्वतों के पेड़ों पर जो पिछले गीत आपको सुनाया गया उसके साथ ही मिलता जुलता उसी मूड का उसी जॉनर का ये गीत है। आइए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में और लौट कर आते हैं प्रोग्राम में। धन्यवाद।
रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है।
आइए इस खूबसूरत गीत के बाद आपको तीज और त्योहारों की दुनिया में ले चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है श्रावण मास की और हरियाली तीज के नाम से ये त्यौहार हमारे देश में खासकर जो है वो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें, आज तीज है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो भारत की तरफ से। हम अपनी नॉर्मल बातचीत में तीज त्यौहार का जिक्र करते हैं कि तीज त्यौहारों में ऐसा होता है, तीज त्यौहारों के लिए कपड़े संभाल के रख लीजिए, ये तीज त्यौहार आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तो त्यौहार तो हम सब जानते हैं, तीज जो है वो खासकर जो है वो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में हर बार ये होती है हरियाली तीज, इसको कहा जाता है ज़्यादातर के स्टेट्स में जो मनाई जाती है। इस बार जो तीज है वो 3 अगस्त की यानी आज की है। हरियाली तीज 2019 में जो मनाई जा रही है 3 अगस्त को, उसको शीतल महीने में तीज पर झूले डाले जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और मौसम के मिजाज में बड़ा जोरदार तड़का लगता है। हिंदू धर्म में लोग सावन मास का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस महीने में शिवरात्रि के बाद से त्यौहार शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले शिवरात्रि, उसके बाद हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टमी और दशहरा, ये सब अब त्यौहारों का सिलसिला आरंभ है। और करवा चौथ और दिवाली तक ये सब त्यौहार, ज़्यादातर मैं कहूँगा कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक, छठ पूजा तक ये त्यौहार आगे चलते रहेंगे। आपको बता दें कि सावन का महीना 17 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन में ही शिवरात्रि है जो अभी पीछे गई थी 30 जुलाई को, और आज के दिन जो है वो तीज है। हरियाली तीज के बाद हरतालिका तीज आती है और हरतालिका तीज 2019 में है 1 सितंबर को। तो साथ में ये भी बताते चलें कि कुछ महिलाएं इस दौरान निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगभग 30 घंटों तक भूखी रहती हैं। तो बड़ा महत्व है इस त्यौहार का, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में जो तीज है वो बहुत ज़्यादा पावन मन से और बड़े उत्साह से मनाई जाती है और पति पत्नी के प्यार को समर्पित इस पर्व को मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन भी हुआ था। इसको छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है तीज के ऊपर आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ज़्यादातर हम त्यौहार मना लेते हैं और उसके बारे में जानकारी कम रखते हैं। तीज त्यौहार के बाद आइए आपको एक गीत सुनते हैं। इस तीज के जो पति पत्नी और शिव पार्वती से जो पुनर्मिलन से जो सिलसिला शुरू हुआ और पति पत्नी के प्यार तक ये सिलसिला चला है, आइए इससे मिलता जुलता एक खूबसूरत गीत मैंने आपको सुनवाना तो थोड़ी देर में था, लेकिन अब ये बात चली है पति पत्नी की, तो आइए गीत सुनते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता हूँ, मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता हूँ, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है, मुझे ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, मुझ जैसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है।
लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है बचने लगी चाहत पा है हर सुअसर फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर
लता जी के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ आइए कुछ कमर्शियल्स की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजीव मलिक कहते हैं कि डू नॉट गो फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट हैं संजीव जी, विजिटर टू कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस, न्यू इमिग्रेट इंश्योरेंस, लाइफस्टाइल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस में ग्रुप बेनिफिट्स भी हैं इनके पास, हेल्थ, डेंटल और विजन प्लान्स भी जिनमें शामिल हैं। 6478834445 संजीव जी का नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज में संजीव जी डील करते हैं। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 6478834445। डीपी जैन साहब, सीपीए सीजीए 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से ज्यादा से फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कनाडा में एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग और एडवाइजरी में, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट पर्सनल एंड बिजनेस टैक्सेस, कंपनी कॉर्पोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सीआरए ऑडिट्स, एचएसटी, पेरोल मैटर्स एंड अकाउंटिंग के लिए आप इन्हें 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं। जैन साहब, टीपी जैन साहब बहुत ही मजे हुए फिनेंशियल मैटर में एक्सपर्ट हैं और आप इन्हें किसी भी समस्या के लिए या किसी भी हेल्प के लिए आपके अकाउंटिंग और बिजनेस में 416-305-0080 पर कॉल कर बात कर सकते हैं। आपके ऑटो और होम इंश्योरेंस कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज, प्लीज कॉल हर एट 416-262-0414। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फोन उठाइए और बात कीजिए और एक कॉम्पिटिटिव कोट लीजिए। कोमल भारद्वाज 416-262-0414। प्रोफेशनल रियल एस्टेट की किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए आप टीम जीटीए रियलिटी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं 6476400555 पर आप बात कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए टीम जीटीए रियलिटी आपकी सेवा में उपस्थित है हमेशा। आप 6476400555 पर किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प के लिए फोन कर सकते हैं। परवीन दलाल जी रेड स्टार रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, सेंचुरी 21 के साथ, और 6472695666 पर आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रवीण दलाल.com पर भी, और नंबर में आपको बता दिया है। प्रवीण दलाल जी बहुत ही एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट में और बहुत बैक होम भी इनके पास काफ़ी लाइसेंसेज हैं, यहाँ भी काफ़ी लाइसेंस है इनके पास। एक्सपीरियंस रियल्टर हैं, माल्टन एरिया में खासकर इनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। आप 6472695666 पर प्रवीण दलाल जी से बात कर सकते हैं। रेड स्टार रियलिटी सेंचुरी 21 के साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण जी। आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल लेते हैं और प्रोग्राम में लोड कराते हैं।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनवे ड्राइव, यूनिट 211, मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहाँ था वहीं खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कैनेडा वाइट फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group, 647-699-888, 647-699-888.
एक और समाचार में आपको बता दें कि पत्रकारिता से संबंधित एक बेहद सम्मानित अवार्ड है जो रवीश कुमार जी को मिला है। रवीश कुमार, जैसा कि आप जानते हैं, NDTV से जुड़े हुए हैं और अपनी जो दबंग पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, रेमन मैक्सेसे अवार्ड उनको दिया गया है। भारतीय हिंदी टीवी पत्रकारिता में अहम योगदान देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को एशिया का नोबेल, यानी ये जो रेमन मैक्सेसे अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और उनसे सम्मानित किया गया है। साल 2019 में इस सम्मान के लिए चयनित किए गए 5 नामों में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार का नाम भी शामिल है। ये मौका तकरीबन 12 साल बाद आया है जब किसी भारतीय को मैग्सेसे सम्मान मिला है। रवीश कुमार यह अवार्ड पाने वाले 11वें भारतीय पत्रकार हैं और जैसा कि आप जानते हैं, इसके अलावा रवीश कुमार जो हैं वो अपनी दबंग पत्रकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। रवीश कुमार के अलावा जो 4 रेमन मैग्सेसे अवार्ड के अन्य विजेता हैं उनमें म्यांमार के स्वेविन, थाईलैंड के अंखाना नीलाजपति, फिलीपींस के रेमुंडो पुंजाते और कयाब, और दक्षिणी कोरिया से किम जोंग हैं। यह सम्मान बेआवाजों की आवाज़ बनाने के लिए दिया गया है। पुरस्कार संस्था ने ट्वीट करके बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान बेआवाजों की आवाज़ बनने के लिए दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इस संबंध में कहा कि रवीश का समाचार कार्यक्रम प्राइम टाइम आम लोगों की वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित है। यदि आप लोगों की आवाज़ बन गए हैं तो आप एक पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता से संबंधित भी कभी हालांकि जो लोग न्यूज़ देते हैं वो लोग न्यूज़ थोड़ा अलग ढंग से देखा जाता है उस चीज़ को, लेकिन अपना एक अवार्ड फंक्शन है और ये जो है वो न्यूज़ देना भी ज़रूरी है कि जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत हद तक सम्मानित किया जाता है, ताकि उनको उन्होंने जो काम किया है वो जो अपना राजनीतिक और बिजनेस ग्रुप हाउसेस के प्रेशर के बावजूद अपना काम ईमानदारी से करते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ताकि वो अपना काम और अच्छे से करते रहें। रवीश कुमार जी के इस अवार्ड के बारे में आपको एक खबर अभी जो तुरंत आ रही है वो भी आपसे साझा करते चलते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर से कहा है कि कल के बारे में नहीं जानता, लेकिन आज चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खबर तुरंत अभी आई है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों के हथियार जमा करवाए जा रहे हैं। मैं बार बार कश्मीर के बारे में आपको खबर ये बताता इसलिए चल रहा हूँ कि कश्मीर में इस समय बहुत तेज़ी से वातावरण बदल रहा है, बहुत तेज़ी से जो हैं वो खबरें भी बदल रही हैं और उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल ने उनको भरोसा दिलाया कि 370 या अनुच्छेद 35A पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये खबर जो है वो अभी जारी है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होगा और हो सकता है 15 अगस्त के बाद कोई कहानी सामने आए। एक खबर अमेरिका से लेते चलते हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है। सीएनएन के अल्पासो के मेयर चीफ स्टाफ ओलिविया जीपेड के हवाले से बताया कि मॉल में गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई है। 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय समाचार चैनल ने पहले 18 लोगों की गोली लगने की खबर दी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने जम्मू, कटरा और उधमपुर स्टेशनों के यात्रा आरक्षित टिकटों को रद्द कराने के लिए यात्रियों से उन पर लगने वाला शुल्क मंगलवार तक नहीं करने का फैसला लिया है। ये खबर कुछ साथ में आपको बता दें। एक और दुखद खबर है कनाडा से। अमेरिका के बाद हम थोड़ा कनाडा की तरफ रुख करते हैं। जो कंजर्वेटिव एमपी दीपक ओबेरॉय, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कैलगरी से, वो आज कल रात को उनका निधन हुआ है। लीवर कैंसर से ग्रस्त थे और बड़े ही अपफ्रंट और बड़े स्पेशल एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे ओबेरॉय जी, और कंजर्वेटिव पार्टी के जाने माने लीडर रहे हैं। और कैलगरी में उनका जो निधन हुआ है, और हार्ट ब्रोकन न्यूज़ है। एंड्रू शियर ने कहा है, ये कंजर्वेटिव की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि ही ब्राइटन्ड एवरी रूम ही वॉक्ड इनटू एंड ऑफन इंजेक्टेड वार्मथ, काइंडनेस एंड गुड ह्यूमर इनटू आवर डेलिब्रेशंस। आई नो आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय कंजर्वेटिव कलीग्स व्हेन आई से दैट ही विल बी मिस्ड ट्रिमेंडियसली। ये बात मैं भी आपको कहना चाहूँगा। पर्सनल तौर पर दीपक जी से कई बार मुलाकात हुई है। बड़े ही चार्मिंग और बड़े ही दबंग किस्म के लीडर रहे हैं, और जो भी बात कहनी थी वो कहने में कभी हिचकिचाए नहीं। लीवर कैंसर से ग्रस्त थे, उम्मीद तो नहीं थी असामयिक मृत्यु है, लेकिन मृत्यु पर बस किसी का नहीं है। और बड़ा दुख है। और यहाँ की कुछ संस्थाओं जैसे इंडो कैनेडियन हार्मनी फोरम और इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी फेसबुक पर और ट्वीट कर इस घटना, इस दुर्घटना के बारे में अपना शोक प्रकट किया है। दीपक ओबेरॉय जी हमेशा इन अपनी जो खुशनुमा छवि थी, जो कि नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल होते हुए नॉन पॉलिटिकल वो बातें कई बार कर जाया करते थे, वो उनके सादे जो उनका चरित्र था, जो सादा चरित्र था और खुला हुआ चरित्र था, वो हमेशा उभर कर सामने आता था। बहुत समय तो लगता ही नहीं था कि ये दीपक जी किसी तरह के पॉलिटिशियन हैं। उम्मीद है कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रोग्राम ख़त्म करने की इस न्यूज़ के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम हम थोड़ा पहले इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि एक खूबसूरत गज़ल आपको सुनाना चाहता हूं, जो कि बड़ी बेहतरीन गज़ल है। और थोड़ी क्योंकि ये लंबी है, इसलिए कुछ 3-4 मिनट पहले मैं ये आपका प्रोग्राम आपसे विदा ले रहा हूं। और गुलाम अली साहब की ये गाई गज़ल है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और अगले शनिवार हम आपसे फिर 4 से 5 के बीच मिलेंगे। 6476400555 पर आप रेडियो भारत के लिए फ़ोन करना चाहें, मैसेज करना चाहें तो आपका स्वागत है, सलाह देना चाहें तो भी स्वागत है। आप ये प्रोग्राम 6475571017 पर मोबाइल पर सुन सकते हैं, और eawaz.com पर अगर आप जाना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अपनी गाड़ियों में तो 770 AM आप ट्यून कर ही सकते हैं। आइए बेहद खूबसूरत गज़ल के साथ इस प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। अगले सप्ताह शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अरविंद भारद्वाज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
सिर्फ एक बार मुलाकात मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट, ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल डे बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप।
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट,
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम,
टिकट फ्री पार्किंग फ्री। स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583।
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में, आमची मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में, कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में, जलेबी तलेगी चटोरी गली में, कपल का नान मटका चटोरी गली में।
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb lap lapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
Pakistan!
बिजनेस रन करना मुश्किल है, सो प्रिंटर की प्रॉब्लम से इसे और मुश्किल क्यों बनाएं? फास्टर और स्मार्टर प्रिंट करें अपने नए HP OfficeJet Pro प्रिंटर के साथ और सब्सक्राइब करें HP Instant Ink, Canada's only ink subscription service, जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP OfficeJet Pro प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP Instant Ink स्टार्टिंग एट $399 a month. विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
G20 Canada Season 2 started in your city. दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार को देखिए एक्शन में।